Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jaise Moola Dhar mein char akshar hain, unmein वम सम सम लिखा हुआ है, ऐसे मानते हैं। और फिर धीरे धीरे स्वादिष्ठान की ओर बढ़े तो यम रम लम उसमें लिखा हुआ है, छह पंक्तियां हैं तो छह पंखुड़ियां ऐसे अलग अलग हैं। मणिपुर में दस हैं, फिर अनाहत में बारह पंखुड़ियां हैं, बारह पंखुड़ियां, फिर सोलह पंखुड़ियां हैं विशुद्ध में, और फिर आज्ञा चक्र में केवल दो है। तो इस तरह से और हरेक में अक्षर लिखे हुए हैं। तो हमारे हृदय कमल की पंखुड़ियों में क्षमा करुणा उदारता, ये जो सद्गुण हैं, ये उनमें अंकित हैं। यदि उन पंखुड़ियों पर क्षमा करुणा उदारता नहीं रहेगी तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए क्या आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। जिस समय आप ध्यान में बैठे उस समय कुछ मत सोचें, क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता है और ये इसकी आदत ऐसी होती है कि या तो पीछे जाएगा भूतकाल में या आगे दौड़ के चला जाएगा बंदर की तरह। और आगे दौड़ का जब पीछे दौड़ा, आगे दौड़ा पीछे दौड़ा, ऐ दौड़ धूप लगाए रहता। तो जब आत्मसंस्थम मना कृत्वा, जब मन को अपने आश्रय में रख दोगे, आत्मा में रख दोगे, तब फिर वो नहीं संकल्प विकल्प करेगा। एकमात्र दूसरी बात और है कि बुद्धि में श्रद्धा और हृदय में प्रेम, जब दोनों मिलकर के एक केंद्र में आ जाते हैं तो उस समय भी मन की कोई गति नहीं होती। ये बात निश्चित है, मन की गति वहीं तक है बस। फिर मन को सोचना नहीं पड़ेगा कि हम चंचलता दूर करें, शांत हो जाए, अपने आश्रय में टिक जाएगा। क्योंकि ये बात निश्चित है कि मन सत्वांश से बना हुआ है, सत्वगुण के अंश से, इसलिए उसमें रजोगुण और तमोगुण स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक सत्वगुण ही है। ये तो ऊपर से ला दिया जाता है। जैसे जब तेज हवा चलती है ना, तो गंगा जल में अपने आप लहरें उठने लगती हैं। लहरें क्या है, वही गंगा ही जल तो है। इसी प्रकार से चिद्रूप ज्ञान की लहरें उठती हैं, कोई संकल्प विकल्प है। अगर विचार करके देख लो तो फिर बढ़िया काम बन जाए। इसलिए कहा न किंचित अपि चिंतयेत, फिर कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। मन को दोनों के केंद्र में स्थापित कर दो। अब जब स्थापित हो जाएगा तब कुछ नहीं सोचेगा। ये धीरे धीरे शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृतगृहीतया, क्योंकि बुद्धि से ही सब काम लिया जा सकता है भाई। इसलिए यहां कहा गया कि सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध, संपूर्ण इंद्रियों को रोक करके और भक्तिया सुगुरुम प्रणम्य, और बड़े भक्ति से अपने गुरुदेव को मन ही मन में प्रणाम करो। अब जरा ये थो सोच लो, वैसे प्राणायाम की विधि है, कल आपने सुना भी था, लेकिन सबसे बढ़िया है गुरु जी के चरणों में मन ही मन में प्रणाम कर लेना। और कैसे, बोले भक्तिया प्रेम से। गुरु माने होता है उपदेशक। तो जो चार महावाक्य हैं उन चार महावाक्यों का उपदेश देता है। वाक्य होते हैं तीन प्रकार के, एक महावाक्य होता है, एक अनुभव वाक्य होता है, एक वाक्य होता है। तो अनुभव वाक्य तो वो है कि जो हमने सुना है, समझा है, उसको अनुभव करें। कल निवेदन किया गया था कि भोजन कितना करें जितना पच जाए। तो पचाने के लिए भोजन किया जाता है, इसलिए सुना क्यों जाता है? जो हमारे जीवन में उतर जाए, उतारने के लिए किया जाता है। ये नहीं कि सुनाते हैं टन भर, सुनते हैं मन भर, उतारते हैं कन भर, ये तो गड़बड़ है। माने जितना पच जाए उतना भोजन। इसी प्रकार से श्रवण करते करते धीरे 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 उसको पचाते रहना चाहिए, जो व्यवहार में आ जाए। तो महावाक्य माने जो दो को जोड़े, एक जीव और एक ईश्वर, एक कूटस्थ और एक ब्रह्म, इन दोनों को जोड़ने वाला, इसलिए महावाक्य का। महावाक्य माने बड़ा भारी वाक्य नहीं है, अयम आत्मा, ये तो दो ही शब्द है, लेकिन दोनों को जोड़ने का हो नाम है। अयम आत्मा, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, ये अलग अलग वेद के चार महावाक्य हैं। इसका अर्थ ये है कि जैसे कहा गया कि मैंने तुम वही हो जो 10 वर्ष पहले देखा था, वही रमेश तुम हो। तो देखो, 10 वर्ष पहले जो देखा था वो कैसे हो सकता? तो ये जो 10 वर्ष का काल है ना, इस काल को हटाया। और कहां देखा था? बोले काशी में देखा था, काशी को हटाया। तो काशी हटा दिया और 10 वर्ष हटा दिया, तब क्या रह गया? बोले चेतन चेतन रह गया। मोहन नाम का है, रमेश नाम का जो व्यक्ति है वो रह गया। इसी तरह से स्वयं देवदत्ता, यह वही देवदत्त है। तो ये वही कैसे हो सकता जो काशी में मिला था और 10 वर्ष पहले मिला था? वो तो नहीं हो सकता। लेकिन उसमें जो चेतनता है वो पहले भी थी और अब भी थी, अब भी है। तो चेतन चेतन दोनों एक हुआ, और जो देश और काल था वो हटा दिया, उसी को कहते हैं बाद। तो बाद करके जो हटाया गया उसको और जो रहा, वो दोनों जीवात्मा एक हो गए। जैसे हम कहते हैं कि लहर और गंगा जल एक है, ऐसे ही परमात्मा एक बूंद भी पानी कहीं भरा है तो समुद्र ही है। इसी तरह से परमात्मा आत्मा के रूप में अनुभूत होता है, क्योंकि आत्मा तो साक्षात परोक्ष है, अब परमात्मा परोक्ष है। तो परोक्ष का ज्ञान साक्षात अपरोक्ष आत्मा के रूप में ही होता है, ये नियम है। तो उसका देश और काल को बाद करके, देश काल को हटा करके, इसी को कहते हैं एक भाग त्याग लक्षण। शब्द का जो अर्थ किया जाता है वो 3 प्रकार से होता है, अविधा लक्षण व्यंजना। अविधा माने तो वाच्यार्थ है, अवधेयार्थ वो बताते। और लक्षणा के 3 भाग होते हैं, एक होती है एक भाग त्याग लक्षणा। तो भाग त्याग लक्षणा का मतलब यह है कि एक भाग हटा दिया और जो शेष बचा सो ले लिया, ये लक्षणा है। लक्षणा माने मुख्यार्थ का बाद, असली अर्थ जो है उसका बाद किया जाए। किसी शत्रु से कहा कि तुमने बड़ा हमारे साथ परोपकार किया, तो परोपकार माने यहां अपकार है, ये उल्टा अर्थ, मुख्य अर्थ का बाद हो गया। ये त्याग लक्षण है, अपने अर्थ का बिल्कुल त्याग कर दिया। इसी को साहित्यकारों ने काव्य प्रकाश इत्यादि में बहुत विस्तार से लिखा। कई कई प्रकार दिए, कई कई भेद दिए, लेकिन आपको तो सिर्फ इतना जानना है कि जो मुख्य अर्थ है, असली अर्थ है, उसका बाद हो जाए। जैसे ये तो गंगा में ही रहते हैं, इनका तो घर गंगा में ही है, तो आप लोग ज्यादातर लक्षण ही बोलते रहते, ए टोपी इधर आओ, ए रिक्शा इधर आओ, तो रिक्शा थोड़ी आएगा, वो तो जड़ है। रिक्शा और आने का, दोनों का, शब्दों का अन्वय नहीं लगता है, बाद हो जाता है। तब रिक्शा वाला जो संयोग होगा, जो उसके पास होगा, उसका अर्थ ले लिया जाएगा। जैसे भाले चले जाते हैं, देखो कितने भाले जा रहे हैं, देखो इतनी बंदूकें जा रही हैं, बंदूकें तो नहीं जा सकती, बंदूक वाला जा सकता है। तो ऐसे ही ये लक्षण कहलाती है। जब असली अर्थ का बाद हो जाए तो उसके समीप का अर्थ ले लिया जाता है। ये गंगा में ही मकान है, तो मकान तो गंगा में नहीं रह सकता, धारा में बहकर चला जाएगा। वाच्यार्थ तो इसका यही हुआ कि गंगा का धारा, भगीरथ खाता व छिन्न पय पूरब प्रवाह, जो पानी की धारा है उसको गंगा बोलते हैं। तो गंगा में मकान है, इसका अर्थ क्या है कि गंगा में तो रह नहीं सकता, उसे किनारे होगा तट पर। तो तट अर्थ लक्ष्यार्थ है, ये लक्षणा के द्वारा जाना जाता। ऐसे ही जैसे ये अर्थ लगाया कि गंगा में घर नहीं रह सकता, उनके किनारे पे होगा, ऐसे स्वयं देवदत्ता, ये देवदत्त वही है, वही है, वही देवदत्त कैसे हो सकता? वो देखा था 10 वर्ष पहले, अब ये बनारस में देखा था, अब ये बंबई है, और जरा मुंबई का और बनारस का फासला भी काफी है, और 10 वर्ष पहले जो देखा था सो कैसे हो सकता भाई? तो ये तमाम विचार आ सकते हैं। इसी प्रकार से जीव अल्पज्ञ है, देखो, और परमात्मा सर्वज्ञ है, ये ज्ञान है। तो अल्पज्ञ और सर्पज्ञ हटा दी विभक्ति और दोनों की एकता हो गई। बोले अल्पज्ञ और सर्वज्ञ हटाओ, चेतन चेतन दोनों एक हैं। इसी तरह से एक सज्जन ने कहा कि अरे गंगा जल आप बताते हो, उदाहरण देते हो, गंगा जल है, गंगा, गंगा में तो तमाम नावें चल रही हैं, गंगा में लोग, हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, कमंडल में जो जल, गंगा जल भरा है, उसमें तो स्नान नहीं कर रहे हैं। बोले वो जो गंगा जल है जिसमें स्नान कर रहे हैं, वो आधार है, उसका आधार लंबा चौड़ा है और कमंडल का आधार छोड़ा है, इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है। तो अब आप लोग ये बात ध्यान समझ लो कि ये जो जीवात्मा है, जो अंतःकरण विच्छिन्न है, अंतःकरण से मिला हुआ है, अंतःकरण से तादात्म कर लिया है, और उसके गुण धर्म भी इसके साथ हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकता? तो बोले वो अंतःकरण व्यष्टि और समष्टि का बाद कर दो, दोनों में एकता है, इसलिए कूटस्थ और ब्रह्म की एकता होती है, जीव और ईश्वर की एकता होती है, दोनों का जो विशेष विशेष विशेषण है उनको अलग कर दो। इस बात का उपदेश देने वाला जो होता है वही गुरु होता है, इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसको अगर ये बात ज्ञान नहीं है तो गुरु ही का ही बात का, गुरु बने वजनदार होता है, हल्का फुल्का तिनका होगा तो हवा जरा आएगी उड़ जाएगा। ऐसे ही संयोग आया, वियोग आया, लाभ आई, हानि आई, मान हुआ, अपमान हुआ, तो या तो फूल जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, या रोने लगेगा। और उसकी परिभाषा है निश्चिंत निर्द्वंद निर्भय होना चाहिए, चिंता से रहित, निर्द्वंदों से रहित और भय से रहित। जो व्यक्ति ऐसा रहेगा वही समझ सकता है। तो इससे लाभ क्या होगा, देखो बोलना जरा, बोलो भय भागे भाव जागे भगवान आगे, याद रखना। फिर दोहरा लो, भय भागे भाव जागे भगवान आगे। तो ये जब जीवन में तुम्हारे घट जाएगा तब ये बात समझ में आ जाएगी। भक्त्या सुगुरुम प्रणम्य, प्रणम्य माने केवल नमस्कार करना मत नहीं है, उसने जो उपदेश दिया उसका स्मरण करो कि मैं जीव हूं, ये बात मन से निकल जाए। अरे मैं तो जुड़ा जुड़ाया हूं उससे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर चेतन अमल सहज सुख राशि,
चेतन अमल सहज सुख राशि,
सो माया बस भय गुसाई, सो
माया बस भय गुसाई,
बंध्यो कीर मर कट की नाई, बंध्यो
कीर मर कट की नाई।
देखो ये जीव है भगवान, बिल्कुल परमात्मा है। अच्छा कोई भी संप्रदाय हो, वैष्णव सही, श्री रामानुज हैं, श्री रामानंद हैं, ये जो बल्लभ हैं, माध्व हैं, ये लोग भी इस मानत को ईश्वर का ही अंश मानते हैं। अर्थात तो जैसे लहर गंगा जल की ही है, गंगा जल में ही है, गंगा जल से ही है, इसी प्रकार से जीव मात्र भगवान में है, भगवान का है, भगवान से है, ये बात सब स्वीकार करते हैं। तो आपके अनुभव में ये बात आ जावे कि अरे मैं जीव अलग नहीं हूं, मैं तो उसी से जुड़ा हूं, और जुड़ा ही नहीं हूं, सर्वथा अभिन्न हूं, मिला हुआ हूं। जब ये बात मन में आ जाएगी तब आगे बताए थे हृदय पुंडरीकम विरजम विशुद्धम। हृदय का, हृदय कमल का भी आपने सुना था कि उसमें पंखुड़ियां हैं, और पंखुड़ियों में क्या क्या है, क्षमा है, करुणा है, उदारता है, दया है, ये सद्गुण है उनमें। तो आपके जीवन में भी ये अपने आप आ जाएंगे। देखो ये बात है, समिट समिट जल भर ही तलावा, समिट
समिट जल भर ही तलावा,
जिम सदगुण सजन पही आवा, जिम
सदगुण सजन पही आवा।
ये जो क्षमा है, करुणा है, उदारता है, ये आपको लेने नहीं जाना है। जब आप इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे तो अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि हृदय एक ऐसा है, हरि दो या तीन अक्षर है। हरि माने हरण करना होता है, हरि हरण है, तो सारे शरीर से खून हरण करता है, ऐसे करता है ना पंपिंग, तो जो खींचा सारे शरीर की जो अशुद्ध रक्त है वो वेन के द्वारा, शिराओं के द्वारा खिंच जाता है, इसलिए वो नीली नीली दिखाई देती, और हरी हुआ। अब दा तो यूं हुआ, तो दा माने देना, तो जो आर्टरीज हैं माने धमनी जिनको कहते हैं शुद्ध रक्त की, वो शुद्ध रक्त की धमनियां चली गई, वो खून ले गई सब। हमारा शरीर का सारा शरीर घूमते घूमते रक्त अशुद्ध हो जाता है, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा वो अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में जो आप नाक के द्वारा ऑक्सीजन ले जाते हो, वो फैक्ट्री है, वहां शुद्ध करने की मशीन है। जैसे तुम्हारे यहां पानी नदी का शुद्ध किया जाता है ना, ऐसे शुद्ध करने की मशीन है। और वहां से फेफड़ा से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जब शुद्ध रक्त आया तो हरि हुआ, फिर दा हुआ, फिर या प्रापणे, माने जितनी जिसको जरूरत है उतनी पहुंचाना। जैसे सबसे पहले मस्तिष्क को पहुंचता है शुद्ध रक्त, तो मस्तिष्क को कितनी जरूरत है उतना ही पहुंचेगा, ये या का अर्थ। हरि द या इति हृदय, तो हृदय बहुत कोमल अंश मन का है, बहुत कोमल। इसमें अभी आप सुने कि क्षमा है, करुणा है, उदारता है, ये सब उन पंखुड़ियों में अंकित है। इसलिए कहा जाता है इनका हृदय कोमल है, इनका हृदय कठोर है। ये क्यों बोला जाता है? हृदय न कोमल है न कठोर है, वो तो हृदय है, वो तो प्रेम का एक स्टोर उसमें भरा हुआ है। प्रेम है, प्रेम भक्ति है, और जैसे श्रद्धा बुद्धि में भरी हुई है, और दोनों का जब संयोग जुड़ता है तभी वो ध्यान योग लगता है। तो मन की फिर गति रुक जाती, मन अपने आश्रय में पहुंच जाता आत्मा में। आपने अनुभव किया होगा कि जहां एक बार भी आप नहीं गए हैं, जो स्थान से आप अपरिचित हैं, जो वस्तु से आप अपरिचित, वहां मन कभी नहीं जाएगा। क्यों भाई? इसका मतलब है कि मन हमारा ज्ञान में ही घूमता है। जहां हमारा परिचय नहीं है, जैसे आप फ्रेंच भाषा नहीं जानते, तो आपसे कहा जाए कि फ्रेंच बोलो तो कैसे बोलोगे भाई? तो फ्रांस कभी गए नहीं तो वहां तुम्हारा मन भी नहीं जाएगा, और वो अनुभव नहीं, चिद ही नहीं। वो कहीं वहीं जाएगा जहां तुम्हारा अनुभव है, जहां तुमने ज्ञान किया है। ज्ञान इसलिए ये सिद्ध हुआ कि मन ज्ञान पूर्वक है, जहां ज्ञान नहीं है वहां जाएगा ही नहीं, चित रूप है मन। तब फिर क्या हो, इसीलिए कहा गया हृत पुंडरीकम वीरजम विशुद्धम। शुद्ध माने एक, अशुद्ध माने दो चीजें मिली हुई होती, पहले अंतःकरण और शरीर आत्मा से मिला है, अब विशुद्ध माने एक, अब नहीं रह गया, अंतःकरण नहीं रहा और रजोगुण और तमोगुण भी नहीं रहा। विरज माने विरज रस, फिर रजोगुण नहीं है। तो रजोगुण और तमोगुण तो गुणों का प्रभाव है ना, इसलिए वेदांती लोग गुण मानते ही नहीं, कहते गुणो ही माया मूलत्वाद, न मे मोक्षो न बंधनम, न मेरे में मोक्ष है न बंधन है, ये तो माया मूलक गुण है। इन सत्गुण रजोगुण तमोगुण ने गुण माने रसी भी होता है, इन्हीं के द्वारा हम बंध गए, इन्हीं के द्वारा हम बंधे हुए हैं। तो कैसे छूटे? बोले न मे मोक्षो न बंधनम, गुणों की कल्पना ही व्यर्थ है, इसलिए यहां विरज शब्द दिया गया। रजोगुण तमोगुण वहां नहीं है, और विशुद्ध है मन अकेला, आत्माश्रय मन है। इस समय कोई संकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, न किंचिदपि चिंतयेत, कुछ चिंतन न करे। अब कुछ चिंतन न करने के पहले क्या करना चाहिए, वो उसका विधान है मानसिक पूजन। मानसिक पूजन कैसे, ऐसे न समझ लेना कि ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मानसिक पूजन का बहुत महत्व है। आप लोगों को जिन जिन ने गुरुजन ने जो बताया है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, दुर्गा, हनुमान, जो बताए साकार सगुण भगवान का आराधन, जैसे बताया, जिस विधि से बताया वो इसी विधि करो, लेकिन मानसिक पूजन जरूर करना चाहिए। मानसिक पूजन से बहुत लाभ होता है। अब ये मानसिक पूजन आपको अगले दिन बताया जाएगा, लेकिन याद रखो कि ये हमारे हृदय की पंखुड़ियां खुली हुई विकसित हैं, सूर्य रूपी ज्ञान ने कमल को खिला दिया है और उसमें क्या क्या है, करुणा है, क्षमा है, उदारता है, ये गुण हैं, ये हरेक के भीतर होना चाहिए। अगर कठोरता होगी तो इसका मतलब पंखुड़ियां भी खुली नहीं है, ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ। ज्ञान सूर्य उदय हो करके और आपके जीवन में क्षमा हो, ये नहीं कि जरा किसी ने कुछ कह दिया हल्के तवा की तरह उबल पड़े, तो इसलिए क्षमा, करुणा, उदारता ये होना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।